समग्र भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम और आप सबके हृदय में विराजित प्रभु को भी प्रणाम। नमो नारायण। आइए श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के दसवें श्लोक को पुनः पढ़ते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निरासीर परिग्रह। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निरासीर परिग्रह। योगी युञ्जीत सततम्। योगी कौन है? जिसका सातत्य है जुड़ा हुआ। युञ्जीत युज जोड़ना होता है जिससे योग शब्द बनता है। आत्मानम् आत्मा को, जो हमेशा आत्मा में ही रहता है, रहसि स्थितः स्थिर रहता है, आत्मा में स्थिर रहता है, आना जाना नहीं है। एकाकी यत चित्तात्मा, जिसका चित्त आत्मा है वह एकांत में है। निराशि अपरिग्रह, वो अपरिग्रह है। अपरिग्रही मैंने क्या, जो चीजों को जोड़ करके रखने वाला नहीं है, जमा करने संग्रहखोरी जिसके जीवन में नहीं है। इसलिए उचित है कि जिसका मन इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित, देखो ध्यान दें क्वालिफिकेशन क्या है, वासना रहित एक हुआ, संग्रह रहित दो हुआ, अकेला ही एकांत में। ये अकेला और एकांत ये थोड़ा गड़बड़ दिखता है। अकेला अलग होता है, एकांत अलग होता है। निरंतर आत्मा को परमेश्वर में ध्यान में लगाए। परमेश्वर के ध्यान में लगने के लिए क्या क्या योग्यता है? वासना रहित, पहले तो मन और इंद्रिय सहित जिसने शरीर को आत्मसंयमित किया है, वासना रहित दो, संग्रह रहित तीन, अकेला हो चार, एकांत में हो पांच। अब तब जाकर के आत्मा को परमेश्वर में लगाए। यहां कृष्ण ने बहुत सुंदर बातें कही, कहा कि वासना रहित संग्रह से मुक्त हुआ, समत्व को पाया हुआ योगी का चित्त एकांत में है, वो परमात्मा का स्मरण करे, परमात्मा को ध्याए, परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा का चिंतन करे, उस दिशा में गति करे। तो ये जिसका मन और इंद्रिय, इसमें तो बहुत चर्चा हो गई है कि भाई मन क्या है, ये तो अंतकरण चतुष्टय है, विचार आते रहते हैं जाते रहते हैं, मन की चंचलता है। इंद्रियों के द्वारा मन चलता है, मन के द्वारा इंद्रिय नियंत्रित हो सकती है। अब क्या कहा कि भाई कामना रहित है, तो जिनको इच्छा नहीं हो, तो शुरू से ही इच्छा नहीं होना, इस पर चर्चा हुई। संग्रह खोरी नहीं करे, अपने आवश्यकता हो उतना ही ले, उतना ही खाए, ज्यादा खाए तो फिर रात में उल्टी करनी पड़ेगी, हाँ पेट में बहुत तकलीफ हो जाएगी, छाती में जलन हो जाएगी, कुछ भी है ज्यादा नहीं चलेगा। ये एक राजा है, उन्होंने अपने राज्य में कोई कवि आकर कहे कि मैं बहुत अच्छा अच्छा बनाई, चलिए अभी इस विषय पर राजा जो जो विषय कहते रहे फटाफट कवि बनाता। राजा इतने प्रसन्न, इतना मेधावी, चलो मंत्री जी आप इनको हमारे राज्य कोष में लेकर के जाएं, और जो कुछ भी वो खुद अपने हाथ से उठा सके, एक बार ही जाए अंदर, आना जाना नहीं है। सुबह सूर्योदय से शाम तक में एक बार में अंदर जाकर जितना उठा के लाएं खुद, तो उतना ले जाने दीजिए। वो सोचा मैंने कभी राजकोष देखा नहीं, वो थोड़ा सब्जी लेना है तो एक थोड़ा 2 किलो सामान लाने का थैला लाओ, राजकोष है बहुत कुछ होगा, तो वो 1 क्विंटल चावल का बारदान लेके गया। चलो ये लेके जाते हैं, भर लिया सोने की लगड़ियां लगड़ियां लगड़ियां, इतने भर लिए अब तो हिलता भी नहीं, भरने को बहुत समय लग गया अब हिलता भी नहीं है, तो थोड़ा निकाल दिए, फिर हिलाया, फिर हिलता नहीं, फिर थोड़ा निकाल दिया, फिर हिलाया, ऐसे करके आधा दिन चला गया। अब जब उठाने के लायक रहा तो बोले लोग क्या बोलेंगे, तू मूर्ख है, राजा के कोषा में गया, भंडार में गया, आगार में गया, और कोषाध्यक्ष ने अनुमति भी दी राजा की, पर खुशी थी, खाली सोना लाया, जड़ाने के लिए हीरा तो लाना चाहिए, तो थोड़ा हीरा डाल दिया, फिर उठा नहीं, थोड़ा सोना निकाल दिया, फिर उठा नहीं, थोड़ा और निकाल दिया, उठा नहीं। अब शाम होने को आ गई, अब जो उठाने लगा नीचे से बारदान फट गए। ओ मंत्री जी बोले छोड़ दीजिए, चलो बाहर चलो, काहे दिन ढल गए, हमारे जीवन का दिन भी ऐसे ढल जाता है, बारदान तो फाड़ देते हैं, जीवन का हाथ में कुछ भी लगता नहीं। जोड़ करो अपने आप को, क्या पाया क्या खोया, पाया क्या है पता नहीं, खोने खोना है। अपने जीवन में जागृति रखना, संग्रह खोरी नहीं रखना, एक ही है जिस पर सरकार का टैक्स नहीं है, राम रतन धन पायो, चोर न लूटे, उसको चोर नहीं लूटेगा, राजा का टैक्स भी नहीं है, दिन दिन बढ़त सवायो। ये भगवान जो है वो मैं देखता रहता हूं, जब दोपहर को खाली रहते हैं, और भगवान माने से लिफ्टमैन, खाली रहते हैं दोपहर को, जैसे कल थोड़ा अवकाश था थोड़ा दिन में, तो जमीन पर बैठता है लिफ्ट में, और जो टेबल है उसमें लेकर के राम 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 लिखता है, तो अच्छी बात है, गुण की बात है, ये इसकी कमाई है, इसकी असली कमाई जो उसको 2-4-5 हजार रुपया जो कुछ भी तनख्वाह मिलती होगी वो नहीं है, असली कमाई ये है। ए राजू की कमाई क्या है, इधर से प्लग उधर करना नहीं, इतने संतों को सुनते रहना, इतने संतों का दर्शन करना। आप लोग के जीवन की कमाई क्या है, बेटे हैं बेटियां हैं, मकान भी है, मुंबई में सब कुछ है, पत्नी है बीवी है बच्चे हैं, धंधा पानी कमाई है, मकान मुश्किल है, इन तमाम के पीछे एक जो संग्रह खोरी है, ज्यादा लूटने की बात, ज्यादा जमा करने की बात, कहते हैं फोगट खावे चोर कहावे, कुरान की आवाज है। ईश्वर को पता है आपको कितना देना चाहिए, ईश्वर को यह भी पता है कि किस समय देना चाहिए, ईश्वर यह भी जानते हैं कि क्या आपको देना चाहिए, तो इसके अतिरिक्त जो हमारी वृत्तियां हैं वो दुख का कारण है। ये तमाम बातें तो गौण हो जाती है, क्योंकि इनका चिंतन तो पहले भी काफी कुछ हो चुका है। यहां जो एक शब्द का है कि अकेला एकांत में, तो अकेला और एकांत दोनों एक नहीं होते हैं, अकेला माने जो भीड़ में नहीं है उसको बोलते हैं एकांत, अकेला, कि मैं यहां अकेला स्टेज पर बैठा हूं, आप लोग सब अलग बैठे हैं तो आपसे मैं अकेला हूं। कल शाम संगीत हुआ, भजन कीर्तन हुआ, रसिया हुआ, तो ये शरीर इस स्टेज पर अकेला नहीं था, अभी अकेला है। तो अकेला होना क्या होता है, जो भीड़ से परे हो जाए वो अकेला है, किंतु और भी बड़ी मुश्किल बात, जो भीड़ बाहर है उससे बड़ी भीड़ अंदर भी तो है, आप चले जाएं समुद्र किनारे अकेले बैठ जाएं, आप चले जाएं एंगी गार्डन किसी पेड़ के नीचे अकेले बैठ जाएं, ऐसी घड़ी में जाएं वहां लोग बाग भीड़ भाड़ ना हो, कहेंगे कि मैं अकेला हूं। नहीं, आप अकेले, बाहर तो भीड़ नहीं है, अंदर बहुत भीड़ है, अंदर धक्का मुक्की भी चलती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अंदर जो आंधी चलती है, अंदर जो समुन्द्र उछलता है, अंदर जो भीड़ बनी हुई है, उसके रहते भी आप अकेले नहीं हैं। तो फिर एकांत क्या हुआ? एकांत यह है एक में अंत। जैन संप्रदाय है तो वो शादवाद की बात करते हैं, वो एकांतवाद और अनेकांतवाद की भी बात करते हैं। तुलसी जी ने क्या कहा? ब्रह्म हो, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तेरे मेरे नाते, तेरे और मेरे दो हो गया ना, द्वैत हो गया। वो फिर भी अकेला भी नहीं है, एकांत तो ही नहीं। तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए जो भाव है, जो त्यों तुलसी कृपालो, चरण शरण पावे। एकांत नहीं है, द्वैत है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यहां पर भी द्वैत है, एकांत नहीं है। फिर हमारे जो कबीरदास क्या बोलते हैं, मैं गुलाम तेरा तू साहेब मेरा, फिर भी ये तेरा और मेरा हो गया। नानक भी, तू ठाकुर तुम पे अरदास, ज्यों पिंड सब तेरी दास, ये भी तू और मैं, क्या नानक दास, नानक दास किसका दास, उस परमात्मा का है। फादर क्या बोलते हैं, जीसस इज द सन ऑफ द गॉड, वी आर द सीनर्स। तो ईसा मसीह के जो मानने वाले हैं वो कहते हैं वो तो भगवान का बेटा है, हम सब लोग पापी हैं, हमारा उद्धार करने। तो ये भीड़ तो हो गई, द्वैत भी हो गया। अद्वैत क्या है? अद्वैत का नाम ही एकांत है। अद्वैत माने जो दो नहीं है, चिदानंद रूप शिव हम बोले तो भी द्वैत हो जाएगा। चिदानंद रूप शिव हम, शिव अहम, जो शिव है वो मैं हूं, पर यहां पर भी द्वैत हो जाएगा। अद्वैत करने के लिए हम तो है ही नहीं, मैं तो उन्हीं है, तू ही एक तू, एक तू एक जाने। हाँ, पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, नरसिंह मेहता ने कहा, जल में तू है, स्थल में तू है, पहाड़ में तू है, सब जगह में तू ही तू, मैं तो हूं नहीं। कि जब मैं जब गिर जाएगा, मैं जब मिट जाएगा, मैं बोलने से शरीर के भी नहीं, तो एकांत हो सकता है। ये एकांत के बारे में थोड़ा और गहन चिंतन आवश्यक है। ये एक क्या बोलते हैं, ब्रह्मा सर्वत्र वही दर्शन। जब तक शरीर है तब तक भूख भी है, प्यास भी है, शरीर के तमाम धर्म हैं। शरीर में राग भी है, द्वेष भी है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, छल भी है, कपट भी है। ये तमाम भीड़ के बीच में रहे तो शरीर है, किंतु शरीर के रहते रहते इन तमाम से मुक्ति कैसे हो सकती है? कहते कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, अवस्था त्रय में एक समानता। जागृत में जागृति, स्वप्न में जागृति, सुसुप्ति में जागृति, क्या देहो नाहम, ये देह मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं आना कहीं पर भी, वही है चिदानंद ही है, वही ब्रह्मानंद है, वही परमात्मा है। अल्लाह अहोरमसदाह जिहोवाह झंदे वस्थ वाहे गुरु सतनाम जीसस मोसस बुद्ध महावीर राम कृष्ण झूले लाल श्रीडी साईं बाबा, जो नाम दे वो अलग अलग नाम किंतु एक। हमारे यहां चार तत्व, एक तो है ज्ञान के मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है। तुलसी महाराज से कहा कि महाराज आप ज्ञान के मार्ग में हैं कि भक्ति के मार्ग में हैं कि कर्म के मार्ग में हैं? तो तुलसी बोले बाबा हम तो तीन में से एक भी मार्ग के नहीं, तो कौन से घाट के हो भाई तुम बताओ। तुलसी बोले कैसे हम ज्ञान के घाट के हो सकते हैं? वो ज्ञान वाला क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न चैतन्य क्या बोलते हैं, प्रमा प्रमेय ज्ञाता ज्ञेय, ये इतनी झंझट है कौन समझता है इसको भाई। हम तो ज्ञान के नहीं हो सकते ना अविच्छिन्न चैतन्य, ये क्या होता है अल्लाह मालिक मुझे पता नहीं भाई। ज्ञाता ज्ञेय क्या होता है, प्रमा प्रमेय क्या होता है, इनके जाल में फंसा हुआ है, सीप में रजत, रजत में सीप, सीप में रजत, रजत में सीप, रज्जु में सर्प, सर्प में रज्जु, और क्या बोला गोष्ठ में पोस्ट, पोस्ट में गोष्ठ, यही करते रहते हैं सारा जीवन युगों से, चौथा उदाहरण नहीं है क्या करो। अरे मेरे बस की बात नहीं है, तब तो फिर आप भक्ति वाले हो ना जी। मेरा नहीं भक्ति, क्या भक्ति, कोई कहते हैं सकाम भक्ति है, कोई कहता है निष्काम भक्ति है, कोई कहते हैं सगुण भक्ति है, कोई कहते हैं निर्गुण भक्ति है, कोई कहते हैं पराभक्ति है, अपराभक्ति है, तो भक्तियों का जाल भी कोई कम नहीं है। तुलसी फिर तुम क्या कर्म घाट के बंदे हो? नाजी नाजी, कर्म अकर्म विकर्म सत्कर्म असत्कर्म क्या क्या कर्म के, तो तुम कौन हो फिर? बोले मेरा घाट तो शरणागति का है, मैंने तो अबलो नसानी, अब मुझे शरण में ले रहे हो। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वा। मैं तो शरण हूं, मैं तो हूं नहीं वो ही है, उसी को देखता हूं मैं तो। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जैसे राम जी चलाए, अभी राम जी आपको बोल देंगे तुलसी तेरी शरणागति बहुत होगी, चल अभी ऊपर आ जा साकेत धाम। कैसे आऊं? बोले ऊपर से सीढ़ी फेंकेंगे, एक सीढ़ी लटका देंगे आपके लिए। तो भगवान ने सीढ़ी ऊपर से लटका दी, और जैसे सर्कस में होती है ना झूले में चढ़ के थोड़ी ऐसे ऐसे करके लड़का चल जाता है, अभी झूलता है, सीढ़ी दे दी। तुलसी बोले क्या है, अरे भगवान है वो सीधा साधा है, उसको कपट नहीं है, वो तो पता नहीं है यहां मैं जा ही नहीं सकता हूं, मैं जाऊंगा इतने सारे लोग मेरे टांग पकड़ेंगे, हम चलते हैं, हम चलते हैं, वो भी गिरेंगे मुझको भी गिराएंगे। राम बोलेंगे तो सबको लेके आओ ना, सबको बोलो एक एक पीछे आ जाओ, क्या बात है, ऊपर से कोई गिरा तो, एक गिरा तो सब गिर जाएंगे। तो तुलसी तुम चाहते क्या हो, इस सीढ़ी को क्या बोलते हैं, जो सीढ़ी है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, अवतरणिका, क्या बोलते हैं बोलिए, अवतरणिका। अब सीढ़ी का उपयोग क्या है बोलो, सीढ़ी का उपयोग क्या है, चढ़ना तो है उतरना भी है, जिस सीढ़ी से चढ़ सकते हो उससे नारायण उतर भी सकते हो। तो कहते हैं प्रभु हम इतने सारे लोग चढ़ के आए, आप तो अकेले बैठे हो, अच्छा है आप ही नीचे आ जाओ। हाँ राम जी से कहा आप ही नीचे आ जाएं। राम बोले ठीक है तुलसी, अब मैं तुमको लेके जाता हूं। तुलसी बोले मैं इसे बैठा हूं, युग बीत गया, बंधन में हूं, ये हमारे विश्व के कितने बंधन हैं, ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, मय की ग्रंथि है, पुरुष की ग्रंथि है, अहंकार की कितनी ग्रंथियां हैं, इनको खोलेंगे तो इन रस्सियों को तब तो जाएंगे। भगवान राम जी कहते मैं ज्ञान खड़क से अभी तुम्हारे बंधन काट देता हूं ना, काटना बीटना नहीं है, इन ग्रंथियों को खोलो। अरे तुलसी तुझे मुक्ति होने से मतलब है, अब रस्सी को काट देंगे ग्रंथियों खोले क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। कैसे? राम जी आप ऊपर रहते हो ना, आपको पॉलिटिक्स पता नहीं, मैं तो सबके साथ में रहता हूं, इसलिए थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है। तो तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं ये रस्सी पूरी खुले। क्यों? अब तक आपने हमको बांध के रखा, अब हम आपको बांध के यहां रख देंगे। नाथ अभी आप नीचे आ गए ऊपर नहीं जाने देंगे, इतने लोग चले गए बाकी लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो बाकी लोगों के कल्याण की कामना करते हुए भी तुलसी भीड़ में है, अकेले नहीं है, एकांत तो है नहीं है। राम का कितना चिंतन करने पर भी क्या कहा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये कौन कहते हैं? हनुमान जी महाराज तोते के रूप में बैठ करके। तो तुलसी हुए एक, राम जी हुए दो, संतों की भीड़ तो है, हनुमान भी हुए। तो क्या कहने का है, तात्पर्य है, अर्जुन तो कह रहा है मुझे तो महाराज युद्ध से बचाओ, मैं तो युद्ध करना चाहते नहीं है, मैं केवल प्रभु का चिंतन मनन करूं, प्रभु का स्मरण करूं, मुझे जाने दो। कृष्ण उसको रोक रहे हैं, युद्ध में उन्मुख कर रहे हैं, कर्म में उन्मुख कर रहे हैं। कहते हैं कि तू जो कुछ करना चाहे पहले समत्व को प्राप्त कर। तू जब तक इस भीड़ से, अपने अंदर भीड़ जो लगी हुई है, क्या भीड़ है इसके, अर्जुन के में निराश आ गई है, हताश आ गई है, हतप्रभता आ गई है, आगे ये सब हैं, वो मेरे भाई हैं, चाचा हैं, मामा हैं, साले हैं, गुरु हैं, बुजुर्ग हैं, ये भी न बाहर जितने उतने भीतर भी हैं, और अगर मैंने जीत भी लिया तो किसके लिए जीतूंगा, मुझको जीता हुआ देख करके इन लोगों को पता होना चाहिए मैं राजा बना हूं तो मुझे खुशी होगी ना। एक आदमी कुछ सुख भोगता है तो उसको तब तक खुशी नहीं होती है कि दूसरे लोग हैं उनको पता हो कि हमको सुख हुआ है। हम कुछ दिन के पहले लुधियाना में रहे, वहां पर भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई, तो भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई, हम जहां रुके हैं डीसी की, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की कोठी के ठीक सामने, तो उनकी बेटी है वो, हम जहां रुके उनकी बेटी के यहां आती है, समझिए आप चलेंगे कबड्डी प्रतियोगिता, हमने क्या क्या उधर अक्षय खन्ना आ रहे हैं। मैंने बोला कबड्डी देखने जा रहे हो कि अक्षय खन्ना को देख रहे हो, समझिए हम तो अक्षय खन्ना को देखने जा रहे हैं। तो बच्चे बच्चे सब चले गए और तीन घंटे के बाद में वापस आए। वापस आने के बाद में पहला काम क्या किया, अक्षय खन्ना के साथ में जो फोटो खिंचाई थी अपने मोबाइल में, वो दुनिया भर की अपनी सहेलियों को, हाँ बस मैसेज हो तो SMS कहते हैं, वो फोटो भेजे तो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो वो भेज दिया। मैंने अक्षय खन्ना को देखा, उसकी खुशी से तुमने नहीं देखा ना, देख मेरी फोटो। तो ये अर्जुन भी यही कहता है, अगर मैं जीत भी जाऊं तो उसका मुझे क्या खुशी है, जिनको दिखाने के लिए मैं जीत रहा हूं तो मर जाएंगे। दुर्योधन भी जिंदा रहे, कर्ण भी जिंदा रहे, उनको उनके पांव छाती में पांव रख करके मैं खड़ा हो जाऊं फिर देख मैं सिंहासन में। कृष्ण कहते हैं अरे एकांत जो है वो तो तुझे प्राप्त करना ही पड़ेगा, बिना एकांत में कोई गुजारा नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम जंगल चले जाएं, जंगल में आप चले जा सकते हैं, जंगल में आप गए तो चारों ओर केवल पेड़ हैं और कुछ भी नहीं है, न चाचा है, न ताऊ है, न मौसी है, न भाई है, किंतु आपके अंदर की भीड़ का क्या होगा, अंदर की जो भीड़ है उससे मुक्ति कैसे होगी आपकी, कितना प्रयत्न करते चले जाएं एक एक करके नहीं निकाला जा सकता है। एकांत का अर्थ है हमारे भीतर एक स्वर गूंजे, एक दूसरे की मौजूदगी नहीं है, एक ऐसे भीतर में खड़े हो जाएं। ध्यान दें, ऐसी स्थिति कभी कभी आप मानते हैं कि मैं प्रेमपुरी के छत में एकांत में हूं, किंतु जरूरी नहीं है। आपके भीतर जो भीड़ है, अगर आप फ्लोरा फाउंटेन की भीड़ में भी खड़े रहें तब भी आपको एकांत की अनुभूति हो, महसूस हो, तो उसको नाम एकांत है। बाह्य भीड़ के साथ में अंतसत्व का कोई संबंध नहीं है। संबंध जो है वो तो अंतसत्व का है, एक स्वर स्वयं के होने का, द इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, जीव नहीं, केवल ब्रह्म की अनुभूति। क्या है? एकम ज्ञात्वा सर्वम विजानीयात। एक के ज्ञान के बाद में सबका ज्ञान अपने से हो जाता है। एकम लब्ध्वा चा परम लाभम, उसकी प्राप्ति के बाद में और कुछ भी प्राप्त होने को शेष नहीं रहता है। अनंत दूर तक समुद्र की लहरें कितने दूर तक आपको लेके जाएंगी, आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, समुद्र में केवल पानी ही पानी ही पानी ही पानी है। एक भक्त का एक पद है, वो क्या कहते हैं कि एक पानी का जहाज है, किनारे आकर शाम को खड़ा था, उसके ऊपर एक पक्षी आके बैठ गया। भोर 2 बजे 3 बजे जहाज चल पड़ा, तो जहाज चल पड़ा तो पक्षी भी जो बैठा था तो तक पे वो भी साथ में चला गया। अब जब भोर होने के हुए 4:30 5 बजे पक्षी अपने नियम से उड़ना चाहता है, सो तो उड़ा, चारों ओर जल ही जल है, कितना दूर उड़ के जाएगा, एक पेड़ नहीं। अरे क्या हो गया ये? फिर घूम घाम करके तुतक पर आ जाएगा, फिर आएगा इस गुड़ने के लिए, कहां कहां दूर दूर पानी पानी है, कोई पेड़ नहीं, कोई पंछी नहीं, कोई यार नहीं, कोई दोस्त नहीं, फिर तुतक में आ जाएगा। हे परमेश्वर, उस पंछी की दशा क्या है? चारों ओर उड़ने के बाद में कोई नजर में नहीं, फिर वो उसी को पकड़ लेता है, वो अपने अस्तित्व को खो देता है। ऐसे ही मैं भी एक तेरे ही स्वरूप में निमज्ज हो जाऊं। ये बहुत जरूरी बात है। ये हमारे जो संबंध है, वो संबंध हम परस्पर कैसे रख सकते हैं? कभी दो व्यक्ति साथ में भी रहें तो साथ में रहते हुए भी पूर्व पश्चिम रहता है, साथ में रहते हुए भी रोज त्रिकड़धा त्रिकड़धा, गुजराती में सुखे फटाकड़ा फूटे छे, सवेरे से चालू होगा ये। किंतु कुछ लोग हैं कितने दूर रहते हैं, किंतु दोनों का जो परस्पर जो प्रेम है वो ऐसा है, क्या बताएं। हम एक परिवार को जानते हैं अहमदाबाद में, वो पिताजी थे, हमारे आश्रम के ट्रस्टी थे। उन्होंने क्या किया, 4 कोठी बना दी 4 बेटों के लिए। बेटियां तो उनके थी नहीं, है भी नहीं, 4 कोठी बना दी, चारों को रख दिया अलग अलग, तुम अपने अपने कमरे में जाओ, सोने जाएंगे, खाने के लिए फिर वही पिता के घर में आ जाएंगे। फिर कहा ऐसा करो कि भाई रसोई उधर करो, सब्जी इधर आएगी, सब लोग बांट के लेके जाएंगे, आम की पेटियां यहीं आएंगी, बांट के लेके जाएंगे। फिर पिता ने कहा ऐसा मत करो, अपना ही खरीद करो, चावल भी गेहूं भी आटा भी, और हर इतवार को मिलो, एक इतवार को आपके घर में, एक इतवार को आपके घर में, एक इतवार को आपके घर में, बस। अब उनके पिताजी के शरीर शांत होने के 20 साल हो गए। चारों भाई का धंधा साझा है, सबके 2-2 बेटे हैं, उनकी भी शादियां हो गई हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। किंतु हर इतवार को उनका बेटा है, वो भी हमारा ट्रस्टी है, कुछ भी प्रोग्राम हो वो इतवार को 12 बजते उड़ जाएगा, स्वामी जी मारो टाइम थे क्या, हाँ, हसमुख राजो से, प्रकाश राजो से, ओ श्यामू राजो से। कितनी खुशी की बात है कि हम कहां पर भी रहे हैं, किंतु रहते रहते ओ संसार में सरसो रहूं चित्त तारी पास जो, ओ कहीं कुछ भी रहे। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, बड़े घर में एक माई रहती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा करती है, कपड़ा धोती है, रसोई बनाती है। वो मालिक के बेटे बेटियों को मेरा गोपाल मेरा बिट्टू, और छोटा है तो स्तनपान भी करा देती उसकी मां ना रहे तो। किंतु जानती है ये मेरा घर नहीं है और बच्चे भी मेरे नहीं, मेरा गोपाल दूसरा है। तमाम के बीच में रहते हुए भी यह दुनिया मेरे बाबूल का घर, ओ दुनिया ससुराल, ये मेरा जो स्थान है, मेरा गंतव्य है, मेरी स्थिति है,
वो बिल्कुल भिन्न है, वो ये नहीं है, उससे पूरा अलग हूं मैं। पद्मपत्र विभाम बसा, सबके बीच में रहते हुए सबसे पृथक, किंतु शरीर से पृथक नहीं है, मन से भी है, चेतना से भी है, कर्म से भी है, विचार से भी है, संपूर्णतः एक आबरी मैनन नाम का एक इंसान है, उसने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है अंतर हृदय का आकाश, स्पेस इन द सेल्फ। आई हैड ए प्रिविलेज टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इन ऑरलैंडो नासा, द स्पेस बियॉन्ड स्पेस। ये आबरी मैनन जो है उनके पिता भारतीय थे, मां है वो अंग्रेज रही, तो ये मिक्स ब्रीड का बेटा था। उसने एक पुस्तक लिखा, बहुत छोटी सी किताब है, अंतर गुफा का आकाश। वो नामदार पोप के दर्शन के लिए गया, तो जैसे घुटना टेकते दर्शन करते हैं, हमारे जैसे नहीं, पांच घुटने, एक घुटना टेकते हैं, एक ऊपर रहते हैं, फिर ऐसा करके देखते हैं, तो फिर वो पोप है, आशीर्वाद करते हैं, तो पोप ने उसके गाल पर इतना प्यार करके कहा, तुम भारतीय हो, ऐसा पूछा। तो पोप के जो सचिव थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये इंग्लिश है। पोप ने कहा, नहीं ये भारतीय है। वो कहते हैं, नहीं नहीं, इनकी माता अंग्रेज है, इनके माता के संबंधियों ने ही हमको रिकमेंड करके भेजा है। तो पोप ने उसको दोनों खंडों से उठाया, उसका सिर चुमा, फिर पूछा, बेटे तुम भारतीय हो। ये बाबरी मेनन है अपनी पुस्तक में जो प्रारंभ में लिखता है, बड़ा मजेदार है, कहते हैं कि मैं श्री पोप के चरणों में था, एक घुटना जमीन पर था, एक घुटना मेरी छाती में था, मेरा सिर है वो उनके चरणों में रखा, मेरे हाथ है उन्होंने पकड़ रखे थे, मेरी आंख से मैं उनकी आंख में देख रहा था, किंतु वो कुछ और देख रहे थे। होता तो ये जरूरी था कि कुछ वो और देख लेते। उन्होंने मुझ में क्या देखा, मेरी चमड़ी का रंग देखा। मेनन बोलने से तो केरला का होता है, वो तो गोरा होना मुश्किल है। केरला में महिलाएं गोरी होती हैं, पुरुष भाग्य से 100,000 में कभी एक, बाकी सब काले होते हैं शरीर से, चमड़ी से। तो मैं उनकी आंखों को देख रहा हूं, वो मेरी आंखों को देख रहे हैं। फिर मुझसे फिर पूछा, तुम भारतीय हो। मेरे मन में एक क्षण आया, मैं कह दूं कि मैं एंग्लो इंडियन हूं। फिर मैंने कहा, क्यों ऐसा क्यों कहूं, क्योंकि पूरे यूरोप की मान्यता है कि हमारे धर्म का जो सबसे बड़ा पादरी है, सबसे बड़ा पोप है, वो कभी भी मिथ्या हो ही नहीं सकता है, उसने जो कुछ कहा वो सत्य ही होता है। तो जब उन्होंने कहा कि तुम भारतीय हो, मैं क्यों कहूं कि मैं एंग्लो इंडियन हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, कम से कम मेरे पिता तो भारतीय हैं, भले ही मैं यहां मेरी माता के पक्ष से यहां पर आया हूं दर्शन के लिए। मैंने कहा, हा प्रभु मैं भारतीय हूं। वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने मेरे को गले से लगाया। बोलते हैं कि मैं समझा उनको गले से लगाने की क्यों खुशी हुई, इसलिए कि उनके अहंकार की पुष्टि हुई। अपनी किताब में लिखता है कि वाई ही वॉज हैप्पी, मैं भारतीय हूं इसलिए नहीं, अंग्रेज नहीं हूं इसलिए भी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूं, मैंने मान लिया कि मैं भारतीय हूं, तो ये पोप है कभी गलत हो ही नहीं सकते, इनके अहंकार की पुष्टि, इसलिए वो खुशी थे। अब फिर ये लिखता है अपने इस कथा में, अंतर्गुफा में प्रवेश में, क्या कहता है, मुझे समझ नहीं आया इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद में क्यों वो चमड़ी को देख रहा है। हमारे यहां भी एक कथा है, अष्टावक्र जी का आगमन जब जनक के दरबार में हुआ तो लोग हंसने लग गए, तो अष्टावक्र बहुत जोर जोर से हंस रहे। जनक बोले, तुम कहां हंस रहे हो? बोले, ये हंस रहे इसलिए मैं हंस रहा हूं। अरे ये क्यों हंस रहे? बोले, ये मूर्ख हैं इसलिए हंस रहे हैं, और मैं इनकी मूर्खता पर हंस रहा हूं। हा, राजा बोलते हैं, मेरे बड़े बड़े पंडित को मूर्ख, बोले हाँ मैं तो समझा था कि जनक तो महाज्ञानी है, विदेही है, यहां सब आत्मस्थ होंगे, यहां सारे चमार इकट्ठे हुए हैं। काहे चमार? मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, आठ जगह में टेढ़ा हूं, मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, चमार है। ये भी बाबरी मेनन क्या कहता है, हैड ओनली थॉट। इतनी ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद उनको ये भारतीय और अंग्रेज दोनों का पहले भेद है, चमड़ी के रंग का भी भेद है। कितनी कष्ट की बात है, तुम बाहर की चमड़ी देखते हो, अपने शुद्ध आत्मा को नहीं देखते। मैंने सोचा ये कुछ गलत है, ये उचित नहीं हुआ। ठीक है मैं जाके आया, किंतु मेरे हृदय में एक आंधी खड़ी हो गई, एक तूफान खड़ा हो गया। ये इतनी बड़ी कुर्सी के बैठने के बाद में ये गोरा देखते हैं, ये काला देखते हैं, ये भारतीय देखते हैं, अंग्रेज देखते हैं, पुरुष देखते हैं, क्या क्या है। अरे ये तमाम तो नहीं हूं मैं, कुछ अलग हूं। उसने क्या किया, एक महीना पूरा उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। खिड़की से खाना मिलेगा, खिड़की से पानी मिलेगा, वो किसको देखेगा नहीं, केवल अपने को देखता था। मैं कौन हूं, इनक्वायर हुए आई। जो रमण महर्षि कहते हैं, नो दई सेल्फ, अपने आप को देखो एंड बी फ्री। वो फ्री तो नहीं हुआ, देख रहा एक महीने तक, कुछ नहीं सोचा, केवल यही सोचता रहा मैं कौन हूं, कि मैं अंग्रेज हूं, कि मैं भारतीय हूं, कि मैं काली चमड़ी वाला हूं, मैं गोरी चमड़ी वाला हूं, क्या मैं चमड़ी वाला हूं, क्या मैं हूं, ये बात मैं हूं, ये चिंतन। जब तक ये मैं और हूं रहेगा, एकांत संभव नहीं है। ये मैं और हूं के जो, सुनो भाई, आपके बंबई में चौपाटी में लोग पतंग उड़ाते कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर हमारे अहमदाबाद तो पागल है, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल होता है। इस बार भी कोई 69 कंट्री से लोग आए। ये स्टेज कितना बड़ा है, उससे बड़े बड़े पतंग लोग लेके आए, और उस पतंग की डोर नहीं होती है, मेरा हाथ कैसे मोटा है, ऐसे मोटे मोटे रस्सों से वो पतंग उड़ता है। मैंने कहा थोड़ा मुझको भी पकड़ने दो। वो एक साथ में 108 पतंग लगी थी, छोटी छोटी छोटी, बड़ी 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 करके, इतनी बड़ी पतंग। अगर मैं वो पतंग का रस्सा पकड़ के थोड़ा एक जंप कर लेता हूं, जमीन को छोड़ देता हूं, मैं भी उसके साथ पंख होते तो उड़ जाती मैं, रसिया ओ बालमा, वो उड़ जाते थे, इतना जोर रहता है। ये जो पतंग है उनको उड़ाने की उनको कब खुशी होती है, काइपोच है, जब तक वो दूसरे के पतंग को नहीं काटे तब तक उन्हें खुशी नहीं होती है। पतंग उड़ाने का मजा क्या, जब तक दो चार की पतंग काटी नहीं जाए। ये दो चार की पतंग काटना माने अपने से बाहर हो जाना, तू और मैं जान लेना। ये तू और मैं जो है, जब तक तू भी छोड़ दो, केवल मैं भी पर्याप्त नहीं, हूं भी पर्याप्त, आई एम नहीं, इज नो आई दिज नो एम, मैं हूं, मैं भी नहीं हूं। बिहार में एक महात्मा, उनका नाम था मैं ही, उनका सत्संग एक बार यहां जू विले पार्ले स्कीम के बड़े मैदान में हुआ था, तो फिर हमको रहने का पार्ला मंडलेश्वर जी क्या कहा, तो पार्ला मंडलेश्वर जी मुझे कहते रहे, इन बिहारियों के अड्डे में आप कहां से फंस गए। मैंने कहा भाई संत हैं सारे। क्या संत हैं? उनका आपको बुलाया, बुलाए ना, शाम को हमारा प्रवचन है, क्या बोलना है, मैं ही मैं हूं, उनका नाम ही मैं हूं, गुरु जी का नाम है मैं हूं, अब उनके तीसरी पुस्तक चल रही है, मैं हूं, मैं हूं क्या, वो मैं हूं को निकालना पूरा। जब तक एकांत चाहते हो, कृष्ण कहते हैं जब तक एकांत नहीं होगा तब तक आप परमात्मा के ध्यान को नहीं कर सकते। वो जो बाबरी मेनन था कहता है मैंने बहुत खोजा, बहुत खोजा, अपने आप को खटखटाया, बहुत सोचा कि मैं हृदय की गुफा में प्रवेश कर सकूं, इतना सोचता रहा, मैं शरीर नहीं हूं। मगर वो 12 बजे से भूख तो लगती थी, रोटियां तो खा लेता था जो खिड़की से आती है, फिर क्या करता? तो लगता था कि शरीर तो है, तो लगा शरीर जो है इसलिए वो अपना धर्म करे, मगर शरीर है वो तो शाश्वत नहीं है, शरीर चिरंतन नहीं है, परिवर्तनशील है। तो जो शाश्वत नहीं हो, परिवर्तनशील नहीं हो, वो परम नहीं हो सकता है। परम तो क्या कहा है? एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम, ये जो है वो तो शाश्वत है, एक है, नित्य है, वो एक नहीं नित्य नहीं, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम, ये होना चाहिए। तो किंतु शरीर का तो अपना धर्म है, इसलिए भूख भी है, प्यास भी है। मैं शरीर नहीं हूं, एक महीने तक निरंतर मैंने ध्यान किया, मैं शरीर नहीं हूं, एक शरीर नहीं हूं, क्या क्या जप, यही मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक महीने तक सुबह दोपहर शाम रात, मुझे पता नहीं कि आप लोगों का क्या कितना चिंतन अध्ययन है। जो लोग बौद्ध भिक्खु बनते हैं तो उनका नियम होता है कि एक महीने तक पहला रोज कम से कम 12 घंटा ध्यान करना पड़ेगा, दूसरे महीने में आपको 16 घंटा ध्यान करना पड़ेगा, तीसरे महीने में आपको 18 घंटा ध्यान करना पड़ेगा, चौथे घंटे में आपको 20 घंटा ध्यान करेगा, और बाद में एक दिन ध्यान करो, एक दिन नहीं, 24 घंटा बैठो, एक स्थान में बैठो, तब जाकर के वो जैन बुद्ध महात्मा बनाते। हमारा एक विद्यार्थी योग का, योगी तमस्काओ चीन में है, तीसरा है योगी जेम्स लॉ ताइवान में है, दोनों ही पहले बौद्ध भिक्खु बन गए थे, तीन तीन चार चार साल तक, दोनों के ही दाम्पत्य जीवन नहीं है, शाकाहारी है, किंतु ऐसे बैठा दो उनको 24 घंटा बैठ जाएंगे, अब बैठो, हाँ एक घंटा बैठे हो तो कितनी दफे टेढ़े मेढ़े हाथ करके कितना कुछ कर लेते हैं हम लोग, एक चॉइस ऐसा 24 घंटा नमक नहीं खाते, चीनी नहीं खाते, तेल नहीं है, घी नहीं है, बताओ। कल हम लोग सवेरे सवेरे नाश्ता में पापड़ी जलेबी और क्या पपैया मच्छेन नाश्ता किए, उनको नमक नहीं है, उनको चीनी नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं, केवल पानी में उबला खाना खा लेते, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन, ड्रिंक नहीं है, सेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं, ध्यान में बैठते 24 घंटा तक सीधा बैठ सकते, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है देख करके। और एक के संस्था का नाम है निर्वाण योगा, चीन में चलाता है, दूसरा है शिवानंद योगा स्टूडियो ताइवान में चलाता है, सैकड़ों लोग उनके पास में आते हैं, यही कहता है बैठो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो, खुद भी मत सोचो, कुछ भी मत सुनो, शांत, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई ध्यान नहीं, सीधा बैठो, बस खत्म। बड़ी गजब बात है। और सैकड़ों लोग हैं वो ऐसे बैठते हैं, कुछ भी नहीं, आकर के बैठते, सीधा बैठते, कुछ भी नहीं, अंधेरा है, संगीत भी नहीं है, खाली, एयर कंडीशन भी नहीं है, खिड़कियां भी खुली नहीं है, शांत है केवल, बहुत शांत। ये कैसे हो सकता है? बार बार अपने को सोचना, पुनः पुनः क्या सोचना, मैं शरीर नहीं हूं, सोते जागते उठते बैठते होश में बेहोशी में दुरात्मा समझ शरीर में नहीं हूं। ओ बाबरी मेनन कहता है कि एक महीने के बाद मैंने देखा मैं अपने आप को कुछ अलग से महसूस कर रहा हूं, अपने आप को अलग से लगा, मेरी एक यात्रा का पड़ाव पूरा हो गया, अभी मैं दूसरे स्तर में आ गया हूं। उसने लिखा है कि जिस दिन मैंने पाया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैंने आंख बंद की कि अब मैं थोड़ा जानने चलूं कि मैं कौन हूं, तो एक बात तो पूरी हो गई थी। बार बार अब मैं अपने भीतर देखने लगा एक प्रकाश को, तब जाकर के कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद का ज्ञान मुझे हुआ। जो ज्ञान उसको हुआ था उसने फिर संतों से पूछा, तो संतों ने कहा कि यह छांदोग्य उपनिषद का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? यही कि अंतर गुफा में तुमने प्रवेश किया है, वो गुफाएं जो हम बाहर बना लेते हैं, पत्थर को काट लेते हैं, वो गुफा स्थूल है। उसमें जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, मठाकाश, वो भी है। ये बहुत बड़ा कमरा है, 9:30 बजे 10 बजे ऐसे खाली हो जाएगा, कुछ नहीं खाली। तो खाली कमरे में आप यहां बैठ जाओ, खाली कमरे में जब आप बैठ जाओगे तो आप बोलेंगे मैंने मठाकाश में बैठ के ध्यान कर रहा हूं। छत में बैठोगे तो महाकाश के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहा हूं। किंतु ये तमाम सब गौण है, जो परम है वो आपके भीतर है, का नाम है चिदाकाश, चिदाकाश में। और अंतर गुफा बोलने से वहां बोलने से स्पेस, आपके भीतर में एक स्पेस है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान क्या है, वो कहते हैं अंगुष्ठ मात्र आत्म एव, ये अंगूठा के बराबर आत्मा है। कहां रहता है, हृदय गुहा में रहता है। मेरे को बचपन से ही हमारे परिवार में बहुत डॉक्टर रहे और अब तक भी बूढ़ा होने तक भी हमको ये पोस्टमार्टम देखने का शौक गया नहीं है। किस किस का भी पोस्टमार्टम होना हो तो मैं अपॉइंटमेंट कर लेता हूं, मुझको बुलाना, आई वुड लाइक टू सी इट। जैसे कलिंगर बोलते हो ना, आपने तरबूज काटते हो तो ये ऐसे काट के दिखाते ना, लाल है तो ऐसे यहां से काटते हैं, सेरिब्रम कैसा है, सेरिबेलम कैसा है, पिचुचडी पीनियल तो देखते नहीं, फिर ये यहां से काट लेते हैं। हृदय तो ठीक है, फेफड़ा भी ठीक है, लीवर भी है, किडनी भी है, पेनक्रियाज भी है, इंटेस्टाइन भी है, ब्लैडर भी है, स्प्लीन भी है, एड्रिनल, देखता हूं उसमें मन कहां है, बताओ भाई। कितने डॉक्टर को पूछ लो भाई इसमें मन कहां है, एक अलमीरा है यहां पर खोल लो, क्या रखा है उसमें, किताबें रखी है, स्टैंड रखा है, कितने तरह की किताब, जितने प्रवचन चलते उतनी किताब है, किंतु वो किताब के अंदर का ज्ञान कहां है बताओ भाई। पुस्तक तो है, ज्ञानदेव तुकाराम जी क्या कहते हैं, अरे पुस्तकांसा झाला पहाड़, ज्ञान राहिला पल्लीकड़े, पुस्तकों का तो ढेर हो गया और ज्ञान उसके नीचे दब गया। पुस्तक तो ढेर है, रोज कम से कम 10-20 किताबें छपती होंगी, ज्ञान की ही छपती होंगी, वेदांत की भी छपती होंगी, भक्ति की भी छपती होंगी, और ज्ञान कहां है। ऐसे ही जब शरीर को हम पोस्टमार्टम करके देख ले, लीवर किडनी पेनक्रियाज इंटेस्टाइन ब्लैडर सब दिखता है, सेरिब्रम सेरिबेलम दिखता है, किंतु कहीं पर भी मन नहीं दिखता है, आत्मा तो कभी देखा ही नहीं। तो इस आत्मा को देखने के लिए प्रयत्न, तो उपनिषद छांदोग्य उसने क्या कहा, अंतर गुफा है हृदय में जहां मैं हूं, जो मैं हूं। अंतर गुफा में जब प्रवेश करो तो मैं को प्राप्त कर लिया, रहस्य को उद्घाटित किया। जैसे जैसे रहस्य उद्घाटित हो जाएगा, मैं मिटता चला जाएगा, फिर मैं नहीं रहेगा। जब मैं नहीं रहा तो फिर आप दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, मैं नहीं रहा तो हाथ खड़े करके भूल जाएंगे कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, चारों ओर कुछ है, किसको दिखावे के लिए नहीं है। वो मीरा जो नाच रही थी, वो मीरा किसको दिखाने के लिए थोड़ी नाच रही थी, मीरा तो कृष्ण के लिए नाच रही थी। हाँ, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, वो अपने को भूल गई कि मैं राज रानी हूं, वो ये भी भूल गई कि मैं मेवाड़ की हूं, उसको पता भी नहीं है कि मैं स्त्री हूं, उसको पता भी नहीं कि यहां लोग जमाए, उसको यही पता है मेरे तो गिरिधर गोपाल। वो एक ऐसी अवस्था जहां देह होते हुए देह से परे हुआ जाए, एक ऐसी अवस्था कि जहां मन होते हुए मन से भी परे हो जाए, ऐसी अवस्था इंद्रियों में रहते हुए इंद्रिय से पर हो जाए, तब जाकर के एक नया एकांत हो जाएगा। और ऐसे एकांत होने के बाद में ध्यान जो है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। तो जो ध्यान है उसको सरल कैसे करना है, ध्यान को सरल करने के लिए पूरी चेतना वहां लग जानी चाहिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज हैं, वो जब एक गांव में आए तो गांव में वो सब जगह यही बोलते थे, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, एक रब है, एक अरब है, एक अरब है। तो बादशाह है चिढ़ गया, बोले बुलाओ, समझता क्या है अपने आप को, हिंदू है मुसलमान है। बोले तू कौन है, हिंदू है कि मुसलमान, बोले मैं तो हिंदू भी नहीं हूं मुसलमान भी नहीं हूं, दोनों भी हूं। कैसे, क्योंकि अल्लाह है, रब है, वो तो हिंदू भी नहीं है, वो तो मुसलमान भी नहीं है, भगवान भी हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो तो भगवान ही है, उसको क्या हिंदू है क्या मुसलमान है। तो मेरे साथ मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकता है? हाँ, क्यों, नमाज क्या, आप कह दो तो मैं मस्जिद में रह जाऊं, अनुमति दे दो मेरे को, तो कहीं रहने के लिए चाहिए तो मस्जिद में ही रहने का मेरे को अनुमति दे दो। चुप, अभी चल नमाज पढ़ने चल। तो बादशाह नमाज पढ़ने बैठा, तो मेरे साथ नमाज पढ़ेगा, पढ़ूंगा ना, आप नमाज पढ़ो तो मैं पढ़ूंगा। बादशाह नमाज कर रहा है, नानक पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा है, जितनी नमाज ज्यादा देर जितना नानक का हंसना और बढ़ गया, इतना जोर से बहुत जोर से हंस रहा है। अब बादशाह को मुश्किल हो रही है, नमाज पूरी कर सकता नहीं, नमाज में गुस्सा करते नहीं है, किंतु उसको गुस्सा आ रहा है बहुत, नमाज को शॉर्टकट कर सकता नहीं, तो फुल कट कर करना पड़ेगा, सजदा जो है पूरी करनी पड़ेगी, दाएं देखना है तो देखना पड़ेगा, बाएं देखना है देखना पड़ेगा, चारों ओर देखना है तो कान पकड़ना है तो पकड़ना पड़ेगा, झुकना है तो झुकना पड़ेगा, वो पूरी विधि विधान करनी पड़ेगी। और नानक जोर से हंसे जा रहे, कैसे करके बादशाह ने पूरा कर दिया, तो बेवकूफ है, हंसा है जोर से। नमाज पढ़ने के बाद में जो भीतर शांति होनी चाहिए थी, ये तो क्रोध का एक लावा निकल गया। तो बोले बेवकूफ तो तू है, हो नानक बोले बेवकूफ तो तू है, नमाज का क्यों ढोंग कर रहा है, क्या समझता है मैं नमाज कर रहा हूं, गलत है, तो काबुल में घोड़े बेच रहा था इसलिए तो मैं हंस रहा था। बादशाह वॉज टेकन बैक। बादशाह बोलते मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं मेरे यहां घोड़े नहीं है, अच्छे घोड़े चाहिए तो काबुल चला जाऊं, तो मेरे को विचार करने के लिए सोच करने के लिए समय मिलता ही नहीं, आज मैं इधर मस्जिद में आ गया, कोई इधर उधर नहीं है, अकेला था, देखो एकांत में नहीं था, अकेला था, इसलिए मैं जब सोचने लगा अकेला हूं क्या करूं क्या काम पेंडिंग है, अरे वो घोड़े ही खरीदना है तो मैं काबुल चला जाऊं, कैसे घोड़े, तो शरीर तो रहा किंतु वो घोड़े खरीद रहा है काबुल में। तो ये हम अपने शरीर को रखते हुए जो प्रार्थना करते हैं, जो जप करते हैं, जो ध्यान करते हैं, सत्संग में जाके बैठते हैं, तो ये शरीर बैठता है कि मन बैठता है कि आत्मा वहां जुड़ती है, ये सोचना पड़ेगा, तब जाकर के ध्यान अवश्य हो जाएगा। क्रिया कर्मों की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल है, कृष्ण बहुत प्यार से समझाते हैं, इसका चिंतन फिर आगे कल प्रातःकाल करेंगे। वाणी को विराम देते हैं, ओम शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद, आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।